श्रृंखला से 16 जुलाई 1968 कचहरी करना अच्छा है। कचहरी करने में बच्चों का ही फायदा है। इन बच्चों में जो अवगुण होंगे वो आस्ते आस्ते निकलते जाएंगे, क्योंकि कचहरी में सबके बीच में अपने अवगुणों को स्वीकार करते हैं। बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना है, अवगुण अच्छा नहीं लगता है, जिनको भाता नहीं है, जिनमें अवगुण होते हैं वो दिल पर चढ़ते नहीं है, कोई के ऊपर कुदृष्टि भी नहीं रखनी। अंधों के स्कूल में भाषण करने गए थे, बाबा समझाते हैं आंखें ही नहीं है, क्योंकि आंखें ही है जो बड़ा धोखा देती है। सूरदास की कहानी भी इस समय की है। गुस्से में आए कहते हैं ऐसे तो आंखें न होती तो अच्छा था। गुस्से में आए और आंखें ही निकाल दी, क्योंकि ये आंखें बड़ा नुकसान देती हैं। आंखों से ही विकारी कुदृष्टि जाती है। अभी बाप कहते हैं आत्मा को देखो, शरीर को न देखो, शरीर में ही इंद्रियां होती हैं, आंखें भी इंद्रियां हैं, फिर भी इतना समझाते हैं कुछ न कुछ नुकसान कर देती हैं। आंखें धोखा देती है, जो रायल जो बच्चे होंगे वो तो आंखों पर ही गुस्सा करेंगे। अभी तुमको तो ये तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। बाप जानते हैं और चलन से भी समझ जाते हैं, इनकी दृष्टि बड़ी गंदी है, तो जरूर पद भ्रष्ट कर देंगे और इनका बहुत समय का घाटा पड़ जाएगा। इस समय पता नहीं पड़ता है, माया के वशीभूत होकर के हार खा लेते हैं, नहीं तो ये धोखा कब खाना नहीं चाहिए। इससे तो आंखें बंद कर देना अच्छा है। धृतराष्ट्र ने कहते आंखें बंद कर ली, उनकी तो आंखें बंद ही थी, उनको अंधे की औलाद अंधा कहा गया, क्योंकि अंधश्रद्धालु है। यहां तो बाप कहते हैं पवित्र बनना है, कुदृष्टि जानी ही नहीं चाहिए, बहुतों में कुदृष्टि है। बाप जानते हैं ब्राह्मणियों में बहुतों की कुदृष्टि जाती है, वो क्या पद पावेंगे। जन्म जन्मांतर का उनका पद भ्रष्ट हो जाता है और बहुत सजा खावेंगे। बाबा तो सभी बातों का अनुभवी, इस समय वास्तव में ये जो आंखें हैं उनकी बड़ी खबरदारी रखनी। सबसे जास्ती बच्चे इसी भूल में गिरते हैं, खुद भी समझते हैं हम दृष्टि से कितना खराब होते हैं, एक दो में खराब होते हैं ना, लाभ बहुत कड़ा है। शिव बाबा को बाकी पहनने के बाद फिर और किसी को बाकी पहन न सके, बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करके फिर बाकी पहनो। इसलिए पूछते हैं किसकी गोद में आए हो, ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? अगर शिव बाबा याद नहीं है तो विभिचारी कहा जाता है, उन पर पाप पड़ता है। बाबा जानते हैं जन्म जन्मांतर के छींची बच्चे हैं, ज्ञान में चलते चलते शादी कर लेते हैं तो कितना दंड पड़ जाता है, ढेर गिरते पड़ते रहे। अब यहां तो शिव बाबा की बाकी पहनी तो बस, फिर मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, पक्का रहना चाहिए। भाई बहन से भी कुदृष्टि जाती है, इसलिए कहा जाता है भाई भाई को देखो, और आत्मा आत्मा भाई भाई को देखना ये बहुत भारी मंजिल है, बड़ी मेहनत है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में वो अवस्था आ सकती है, कौन सी? आत्मा आत्मा भाई भाई। विश्व का मालिक बनना भी कम बात है क्या? भगवान कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, मैं तो तुमको बनाता हूं। और ये मंजिल बड़ी ऊंची है, सारा देहाभिमान तोड़ना है। देखने में तो बहुत सहज है, कह देते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में नरसिंह नारायण विश्व का मालिक बन सकते हो, सिर्फ अपन को आत्मा समझो, बाप को बाकी पहने फिर किसके शरीर को भी बाकी नहीं पहन सकते, नहीं तो कड़ा दंड पड़ जाता है। बाप फिर भी ये समझाने देते हैं और कल्प कल्प देते रहेंगे, और कब भी किसी के मुख से ऐसे नहीं सुनेंगे अभी जो तुमको सिखाता हूं वो कल्प कल्प सिखाता हूं, सिखाता रहूंगा। बाप कितना समझाते हैं फिर माया नाक से पकड़ लेती है, क्योंकि बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अभी भारत बहुत बहुत गंदा बन पड़ा है, गुरुओं से गंदा होना, बाप से बच्चियों का गंदा होना, बाबा के पास तो सभी मिसाल आते रहते हैं, लिखत में लिख करके भी देते हैं, तब बाप कहते हैं देखते हुए भी न देखो, बच्चों को अपनी बहुत संभाल रखनी है। अहम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, संगम युग पर ही बाप बैठे ऐसी बातें सुनाते हैं, ऐसे भी नहीं कि कोई जल्दी से बन जावेंगे। हाँ, ऊंच पद तो पाना है, और वो पद फिर कल्प कल्प पाते रहेंगे, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों के अंदर में शैतानी रहती है, सच्चाई नहीं रहती है। बाबा के पास रहते हैं परंतु सच्चाई नहीं है। आज बाबा के पास आते हैं, कल जाकर के औरों के पास रहेंगे, क्योंकि अंदर में शैतानी झूठ पाप भरा हुआ है। परंतु बनना तो रायल है ना, प्रतिज्ञा भी करते हो हम ऐसा बनेंगे, तो अपने से पूछे कितना अंदर में कपटी शैतानी आदि भरी हुई है, फिर क्या पद पावेंगे। बाप तो आए हैं नरसे नारायण बनाने के लिए, परंतु जब अपने ऊपर भी कृपा करे ना, अपन को अपनी चलन से ही घात कर देती है। बाप तो बहुत ऊंचे पद प्राप्त कराने के लिए आए हुए हैं, कल्प कल्पांतर के लिए ऊंच पद बनाना चाहते हैं, और बाप को मिस किया, कल्प कल्पांतर सजा खाते रहेंगे, नहीं सुधारेंगे तो जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार होता रहेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे, सजा खाते रहेंगे, 21 जन्म का दुख पहले से ही पाए लेंगे, सुख जैसे खत्म हो जाता है। बहुत खबरदार रहना है, बाप भगवान उनका राइट हैंड है धर्मराज, उनके पास सब कुछ नोट होता है। बच्चों को बाबा बार बार कहते हैं कुदृष्टि मत रखो, सूर्य 7-68 की रात की क्लास का दूसरा पेज, बाबा के पास आते हैं बात मत पूछो, यहाँ समझते भी हैं और घर जाते हैं फिर वही गंदी कुदृष्टि। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा को बाकी पहन दूसरे की बाकी पहनी तो बहुत बारी पाप चढ़ जाता है, इससे तो बाबा को बाकी न पहने वो अच्छा। और ये ज्ञान की बातें समझाते हैं, बहुतों को ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, फिर भी साकार शरीर है। आर्य समाजियों ने भी बाकी का चित्र हाथ किया, ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ते रहते हैं, कोई न कोई विघ्न डालने के निमित्त बन जाती है। तुम्हारा सामना आर्य समाजी ही करते हैं और दूसरे धर्म वाले नहीं करते हैं। ये आर्य समाजी बहुत कट्टर है, क्यों आर्य समाजी ही हमारा सामना क्यों करते हैं और धर्म वाले क्यों नहीं करते। आर्य समाजी इसलिए सामना करते हैं, साकार को तो नास्तिक भी नहीं मानते, लेकिन वो तो सामना नहीं करते। आर्य समाजी इसलिए ज्यादा सामना करते हैं कि वो किसी धर्म में टिक करके नहीं रह पाए। देवी देवता सनातन धर्म की वो कच्ची ते कच्ची आत्माएं हैं, जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। इस्लाम धर्म आया उसमें कन्वर्ट हो गई, फिर विश्वास उखड़ पड़ा। बौद्ध धर्म आया उसमें कन्वर्ट हो गई, फिर विश्वास उखड़ पड़ा। जहां जहां देखते हैं नयापन है वहां वहां घुस पड़ते हैं और विश्वास कहीं भी टिकता नहीं। ऐसी कच्ची कच्ची आत्माओं को भी सृष्टि के अंतकाल में राजाई का लाभ हो जाता है, क्योंकि बल साकार को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, लेकिन निराकार को तो मानते हैं। ये तो मानते हैं कि भगवान है, तो हर धर्म से उनकी आस्था उखड़ती रहती है। इसलिए भारत में उनका जो राज्य चलता है अंत में वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमें कोई भी धर्म की अपेक्षा नहीं है, हमें सिर्फ वोट चाहिए। तुम कोई भी धर्म को फॉलो करो, तो जिनकी आस्था सदैव उखड़ती रही है वो तो तुम्हारा मुकाबला करेंगे, और तुम हो आज से अंत तक एक बाप के ऊपर आस्था रखने वाले। तो भारी विरोध हो जाता है, और ये आर्य समाजी है भी कल के, इनका वर्चस्व इनका धर्म की स्थापना अंत में ही जाकर के होती है। वो निराकार शिव को मानते हैं, और उन आर्य समाजियों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कोई देवताओं को मानते हैं तो कोई नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं तुमको तो एक के सिवाय और किसी को जानना नहीं है, जानना भी नहीं है, पहचानना भी नहीं है, मानना भी नहीं है, और उनके बताए हुए मत पर चलना भी नहीं है। जैसे तुम बच्चे हो वैसे बाप भी बिंदी है, परंतु उसमें सदा काल का ज्ञान है। तुम जन्म मरण के चक्र में आते रहते हो, इसलिए ज्ञान उड़ जाता है। और सुप्रीम सोल बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए सदैव ज्ञानी है, सदा शिव कहा जाता है। तुम्हारे में ज्ञान नहीं रहता, आत्मा तो एक ही जैसी है। तो कहें तुम्हारी आत्मा पतित बनती है, बाप तो एवर प्योर है। आत्मा में ताकत कम हो जाती है, प्योरिटी कम हो जाती है, तो ज्ञान भी नहीं रहता। ताकत कम है और सर्वशक्तिवान तो बाप को ही कहा जाता है, क्योंकि बाप सत्व प्रधान है, वो ज्ञान का सागर है, और नाले से भी तुम भी बनते हो। नाले जाती है तो पवित्रता भी आती है। तो दो बातें हैं मुख्य, नॉलेज और पवित्रता। इसलिए खबरदार रहते रहो, आंखें धोखा देती है, नहीं तो 21 जन्म का पद गंवा देंगे। बच्चे जानते हैं कि बाप सिर्फ कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, ये बात बाप के सिवाय और कोई कह ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के पास आते हैं, ब्रह्मा भी देवता कहा जाता है, कहते भी हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और ये भी 84 जन्म लेंगे, इनको पावन देवता भी कहते हैं, फिर इनको पतित भी कहते हैं। पावन कब कहते हैं? ब्राह्मण संपूर्ण बनते हैं तो पावन है, अधूरा पुरुषार्थ है तो पतित है। ऐसे ही ब्रह्मा भी जब संपूर्ण बनता है तो पावन है, देवता है, पतित बनते हैं तो दाढ़ी मूछें दिखाई जाती है, देवता बनकर के फिर नीचे उतरते हैं। तुम ब्राह्मण पावन भी बनेंगे फिर पतित भी बनेंगे। तो अभी सयाने बनो, अपने ऊपर रहम करो, कुदृष्टि छोड़ दो। भारत में कुदृष्टि बहुत है, सत्युग में कुदृष्टि होती नहीं है। अगर इस कुदृष्टि को नहीं सुधारेंगे तो मुफ्त में बहुत कड़ी सजा के बागीदार बनेंगे, बहुत पछता देंगे। तुमको पिछाड़ी में साक्षात्कार होने हैं, इसलिए अपने पर रहम करो। और कोई से मांगो भी नहीं। बाप कहते हैं एक को याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करो। तुमने तो प्रतिज्ञा की है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, कोई से फीलिंग आता है ये प्रतिज्ञा पालन करता रहे, कोई से नहीं आता है, परंतु दिल में होना चाहिए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप भी कहते हैं मेरे तो सभी बच्चे हैं, और दूसरा तो कोई है ही नहीं, और बाप रूहों को ही देखते हैं। तो बाप के साथ बहुत ही ईमानदारी चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें समझ की बात है। तुम बच्चों में मानवीय बुद्धि भी है और जानवर बुद्धि भी है, कोई मनुष्य से देवता बन जाते हैं और कोई तो जानवर के जानवर ही रह जाते हैं। सूरत मनुष्य की और सीरत जानवरों में सली। बाप तारणा करते हैं, अपना पोता मिल देखो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, सर्वगुण संपन्न बनना है। रोज अपने से पूछो तभी ऊंच पद पा सकेंगे, और बाप को नहीं बतावेंगे छिपावेंगे तो अवगुण वृद्धि को पाता जाएगा, अंदर में खाता रहेगा। तो बाबा बच्चों को सावधान करते रहते हैं, अंदर में खाता है तो समझना चाहिए बाबा हमको सावधान करते हैं, अपने करैक्टर सुधारो। अभी तुम दैवी करैक्टर वाले बनते हो, तो आसुरी करैक्टर को जल्दी बदल ले। मौत पर भरोसा थोड़ी है, रास्ता चलते चलते कभी भी मौत हो जाती है। बहुत गई थोड़ी रही, अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, अभी तो नई दुनिया में चलना है। तो दैवी गुण जरूर धारण करना चाहिए, अंदर में खाता होगा हम क्या क्या कर रहे हैं। बाप तो जानते हैं, बाप कहते हैं गृहस्थ विहार में रहते हुए कमर फूल समान रहो, जो कुछ देखते हो ये तो सभी खत्म होने वाला है, तो इसको इन आंखों से देख करके करे भी क्या। दिन प्रतिदिन पुराने घर का विनाश नजदीक होता जाएगा, टू लेट हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं सिमिर सिमिर सुख पाओ, अंदर बाहर बच्चों को बहुत साफ दिल रहना चाहिए, कोई भी खराब काम नहीं होना चाहिए। बाप को याद करो तो पाप कटे, बाप का बनकर भी फिर पाप किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए बाबा खून से भी लिखवाते हैं, कहते हैं तकदीर बनाओ तो इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसी बनाओ, हमको इन जैसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, और अवगुण तो निकालने पड़े, नहीं निकालेंगे तो भी विनाश सामने खड़ा है, ये हमारे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं सुधरते हैं, चाट नहीं रखते हैं तो खलास हो जाएंगे, और सिर्फ याद का ही चाट नहीं, सर्वगुण संपन्न भी तो बनना है ना। तो मूल बात है अपन को आत्म समझ, बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। अच्छा, मीठी मीठी सीखी दे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्कार। शिवरात्रि की अभ्यर्थवाणी थी, फरवरी 2009 सातवें पीठ के मध्यांत में L&T के वाइस प्रेसिडेंट के साथ बातचीत। बाप दादा ने देखा कि आपने जो संकल्प किया उसको पूर्ण करने की हिम्मत अच्छी रखी, और हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती। हिम्मत रखी ना तो हो गया, अभी हर बात में हिम्मत, कभी हिम्मत नहीं हारो, क्या करें कैसे करें नहीं करना ही है, क्या करें जब कहते हैं ना, तो और भी विघ्न पड़ जाते हैं। और जब पक्का दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि करना ही है तो सब विघ्न भाग जाएंगे, हट जाएंगे। जैसे मच्छर आते हैं तो धूप जगाते हैं, मच्छर भाग जाते हैं। तो ये भी माया की बातें आती हैं, लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ तो मच्छर भाग जाएंगे। ये आपके परिवार में हिम्मत वाली है और सहयोग का पात्र बनी, तो मदद आपकी, हिम्मत इसकी। बाप दादा समझते हैं ये पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दो को साथ देने वाले हैं। इस विशेषता ने यहाँ तक आपको पहुंचाया है। अच्छा, मुन्नी बहन के भाई बहन, भाई और भाभी आए। आप मुन्नी बहन के भाई बहन हो वो तो ठीक है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लकी हो और लवली भी हो, क्योंकि आपने अपना भाग्य बनाई दिया। उनके बच्चे को देखकर देखो इसकी कितनी अच्छी शक्ल है, इसका फोटो निकाला ऐसे ही रखना, अच्छा किया, इसके मददगार बनना, माना बाप के कार्य में मददगार बनना। बाईस फरवरी 2009 की अभिकवाणी का 8वां दिन, यह की सेवा कितना पुण्य है, कितनों का पुण्य होता है तो आपको बहुत लगी। अच्छा, डॉक्टर अशोक मेहता से, बाप दादा ने देखा हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाने आते हैं, तो हिम्मत अपने मित्र वालों की हिम्मत अच्छी है, इसलिए आपको ऑफर आती है। ये हिम्मत वाले बच्चे बनते हैं, उन्हों को मदद ऑटोमेटिकली मिल जाती है, तो आपको ऑफर आती है। ये हिम्मत की निशानी है। अच्छा है, युगल आए हैं, शीरीन बहन और उनकी बेटी सोनल बहन, आपके दिल की मजबूती ने इनको बुलाया है और चलाया है, आप निमित्त बनी हो, परिवार को चलाया, और कभी पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आता है तो कहेंगे विघ्न को भगाने वाली हो, और ये हिम्मत वाली है, बहुत हिम्मत। थोड़ों की हिम्मत से ऑफर आती है, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। आप ही ऑफर आवे तो ये हिम्मत का फल है, और आप साथी हैं, कुछ न कुछ करते रहते हो, इस बात में भी साथी, तो ये पूरा परिवार लकी है। दादी गुलजार की सेवा में जो बहनें निमित्त रही उनको बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। इन्होंने भी रात रात भर जाग करके सेवा की। इन सबको मुबारक। रथ को तैयार किया, ये बहुत अच्छा किया, मुक्त भी हो, अभी थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाओ। और साथ ही बनो, बाप दादा ने अपने हाथों से ध्वज फहराया। आज के जन्मदिन की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी है और ये झंडा सदा ऊंचा बना रहे और सब आत्माओं के दिल में लहरावे, यही आप सबके दिल का संकल्प है। और यही संदेश सभी तरफ देते हो कि अभी बाप आया और वर्षा लेने के लिए बाप के पास आप आ जाओ। एक संदेश देते देते आखिर वो दिन आएगा जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया। वर्षा देने के लिए आ गया और आप सभी को अपने हिम्मत की दृष्टि द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तो आप सबके दिनों में झंडा लहराना है, अभी वो दिन भी आया कि आया। डबल विदेशी बहनों से बाप दादा आपके संगठन को देख करके खुश है। उनका डॉक्टर निर्मला दीदी को ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी के स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। इसने जिम्मेवारी का ताज पहन लिया। हिम्मत रखी उसके लिए विशेष मुबारक। बाप दादा ने उनके सिर पर हाथ रखा। हिम्मत बहुत अच्छी रखी। आप लोगों की जो रीति है मिलने की, वो बाप दादा को अच्छी लगती है। और आपके संगठन को देख करके जो गायत्री और जूड़ी है इनको भी बाप दादा ने याद किया। गायत्री ने अच्छी हिम्मत दिखाई। लौकिक परिवार को और आसपास जो भी सुनते हैं उनको एग्जाम्पल बनकर दिखाए। तो समय पर आप कैसे मददगार बन सकते हैं। और ये बच्चा भी बहुत योग्युक्त है। अंकल और इस बच्चे को खास खास बाप दादा शक्तियों की किरणें देते हुए याद क्या दे रहे और सारे परिवार को भी याद किया। उन्होंने कहा पहली बार ये शिव जयंती पर नहीं है, इसलिए तो बाप दादा ने उनको याद किया। अभी मीटिंग का रूप बदलता जा रहा है, ये भी अच्छे से अच्छा हो रहा है क्योंकि इंडिया वाले भी मिक्स हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। आप लोगों ने हिम्मत रखी तो मददगार हो रहे हैं और होते रहेंगे। ये चलाते चलो। बाप दादा खास जो निमित्त बने हैं उनको मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते रहो और बढ़ते ही रहे। उन्होंने बोला लंदन के महेश भाई ने खास याद दिया है। समय समय पर डायरेक्शन प्रमाण जो सफल करता है उसको सफलता मिलती जरूर है। तो ये महेश भाई का निश्चय बुद्धि अच्छा परिवार है वो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। और पालना भी तो इनकी कितनी अच्छी है, तो वो पालना का रिटर्न दे रहा है, उसको टोली भेज देना है। अच्छा, तो जो हाथी रूपी महारथी का पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी हैं, उनमें मुख्य पुरुषार्थी का नाम गणेश है। वो तो किसका आधार लेता है? ऐसे चूहों का आधार लेता है जो अंदर ही अंदर बेसिक नॉलेज में चलने वालों की जमीन खोखली कर देते हैं नीचे नीचे, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा सारा घर खोखला हो गया। मुकाम गणेश रूपी महारथी हाथी नहीं कर सकता, इसलिए किसका आधार लेता है? चूहों का आधार लेता है। और
बाबा रायपुर राजधानी में बहुत विनाश हो रहा है,
पंखा बंद कर दो, आवाज इसकी ज्यादा।
रायपुर राजधानी में बहुत विनाश हो रहा है, सड़कें चोरी करने के लिए है ना, ये गौरव सरकार ने बहुत विनाश कर रही नगर पालिका में, ये सब हो रहा है, लोगों का जीवन त्राही त्राही सब, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा?
ये अकेले रायपुर राजधानी की बात नहीं है, रायपुर राजधानी हो, चंडीगढ़ राजधानी हो, या बंगलौर राजधानी हो, या भोपाल राजधानी हो, आप जहां रह रहे हैं वो आंखों से देख रहे हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं। सारे भारतवर्ष में जो भी राजधानी है वो छोटी छोटी राजधानी है, और जो छोटे लोग होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? मुरली में बाबा ने बोला है, बड़े जो कर्म करेंगे बड़ों को देख छोटे फॉलो करेंगे। तो रायपुर हो या कोई भी स्टेट की राजधानी हो, वो दिल्ली को फॉलो कर रही है, और दिल्ली में भी यही हालत है। ये कौरव गवर्नमेंट है, वो अपनी मनमत के ऊपर, मनमत के आधार पर दिल्ली को स्वर्ग बना हुआ देखना चाहती है। तो गरीबों को मरने दो और देखने में दिल्ली स्वर्ग नजर आने दो। विदेशियों को फॉलो कर रहे हैं ताकि सारी दुनिया के विदेशी कहें कि दिल्ली वंडरफुल, बढ़िया, ऊंचे से ऊंची, अच्छे से अच्छे राजधानी है। ये कौरव गवर्नमेंट की मनमत है, गरीबों को दुख दे करके कोई भी स्वर्ग नहीं बना सकता। ये तो भगवान बाप है जो गरीब निवाज बन करके आता है, गरीबों को ही ज्ञान दे करके सुखी बनाता है और स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है। ये स्वर्ग बनाने वालों के छक्के छूट जावेंगे, जब बड़े बड़े भूकंप आवेंगे और ये मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग्स सारी धराशायी होने लगेंगी, गटर लाइन टूटने लग पड़ेंगी, तो शहर छोड़ करके कहां भागेंगे कि शहर में ही बने रहेंगे हैं? गांव की ओर भागेंगे। अभी गांव को छोड़ करके शहरों में भाग रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमत राजधानियों में बढ़ती जा रही है, फिर क्या होगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दो कौड़ी की हो जाएंगी।
बाबा, जैसे लौकिक शरीर छोड़ने के टाइम जगन्नाथ जी का और सुभद्रा में का साक्षात्कार होते हैं,
शरीर छोड़ने के टाइम साक्षात्कार होते हैं?
जैसे लौकिक युगल शरीर छोड़े उस टाइम जगन्नाथ जी का सुभद्रा,
आपके लौकिक युगल ने
तो जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी का साक्षात्कार होता है और कहते हैं कि कुछ दिन अपाहिज रहना पड़ेगा उसका बेहद
है?
कुछ दिन तुमको ऐसा अपाहिज रहना पड़ेगा, इसका बेहद में क्या है?
किसको कहा?
मैंने हमको,
आपको कहा
जी,
साक्षात्कार हुआ ऐसा?
हाँ जी।
ये कहा किसने?
जगन्नाथ जी भक्ति मार्ग में जो जगन्नाथ जी मंदिर है ना उड़ीसा में,
जगन्नाथ ने आपके सामने साक्षात्कार में कहा
जी
कि अपाहिज होके रहना पड़ेगा?
कुछ दिन अपाहिज रहना पड़ेगा, बस इतना कह के फिर नींद खुल गई।
वो सिर्फ आपकी बात थोड़े ही है, वो सारी दुनिया की यही बात है। अपाहिज माने हाथ पांव टूटे हुए, माने कोई सहयोगी रूपी भुजा नहीं रहेगी, क्या बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा, भाई भाई नहीं रहेगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। द्रौपदी का साथ कौन देगा? जब चीरहरण दिखाया गया तो द्रौपदी का साथ किसने दिया? बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, कोई ने साथ नहीं दिया। भगवान ही साथी होता है। तो दुखी होने की बात है?
दुखी नहीं हो रही बाबा, मैंने बाबा नहीं मिले थे तो मैंने संकल्प उठता था, मैंने इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्यों ऐसा,
अब तो मतलब पता चल गया ना,
साक्षात्कार क्यों हुआ फिर? बाबा का,
बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, आप भी।
बाबा मुरली में अभी बोला कि भारत जो है विदेशियों से कर्ज में बहुत डूबा हुआ है, तो ये चैतन्य भारत के ऊपर कैसे लागू है?
चैतन्य भारत अपनी कमाई कर रहा है क्या? है अपने लौकिक घर से कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के बैठा हुआ है क्या? है
नहीं, तो विदेशियों से कर्ज लेने के लिए
किसका ले रहा है?
विदेशियों का,
विजय माला उनको दे रही है या रुद्रमाला की विदेशी दे रही है? सीढ़ी के चित्र में जो भारत भिखमंगा पड़ा हुआ है उसकी पहचान नहीं हुई? पहचान होगी तो प्रश्न क्यों पूछते? जो भारत भिखमंगा पड़ा हुआ है उसको कर्ज कौन दे रहे हैं? विदेशी दे रहे हैं या भारतवासी कर्ज दे रहे हैं? वो कौन विदेशी है? ये रुद्रमाला के जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले विदेशी हैं, वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बाद में तीखा पुरुषार्थ करते हैं या पहले से ही तीखा पुरुषार्थ करते हैं? बाद में तीखा पुरुषार्थ करते हैं, तो अंतिम जन्म में खाते पीते होते हैं तो ज्यादा पैसा भी देते हैं, तो कर्ज नहीं चढ़ रहा है, है? कर्ज चढ़ रहा है। और
बाबा अमृत माता है आपको नरेश्वर महाराज जी
है?
अमृत माता है,
अमृत माता है।
तो उन्होंने कहा था कि मैं सेंटर में जाकर सिलेंडर बजाऊंगी, मेरा भी
कौन से सेंटर में?
सेंटर
डीके में की एडवांस,
माने एडवांस में चल रही है।
हाँ, तो फरुखाबाद में
हाँ
जाके वहाँ कंपनी में भी काम है, जाके मैं सिलेंडर वहाँ मैं भी रहूँ,
हाँ
सेवा करूँ।
हाँ,
तो उनको थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसमें सिलेंडर नहीं हो सकती हूँ क्या?
जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है तो क्या अटैक हो चुका है दो एक बार?
नहीं
नहीं, अब तो खाना पीना सब अपना चलती घूमती सब,
वो तो चलता है, लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम जिसको होता है उसको अचानक हार्ट अटैक होता है। जब हार्ट अटैक होगा तो उस समय वो सेवा लेने वाली बनेंगी या सेवा देने वाली बनेंगी? और कितने लंबे समय तक सेवा लेने वाली बनेंगी ये भी पता नहीं। आजकल तो कामा में कई दिन महीनों तक भी चले जाते हैं, तो आत्मा के ऊपर यज्ञ का बोझ चढ़ेगा या आत्मा हल्की होगी? बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से तन का जो कर्जा चढ़ा हुआ है उस कर्म भोग को खत्म करके आए तो अच्छा है।
बाबा गायत्री को तीन मुख और पांच मुखी बताए तो उसका बेहद क्या है?
गायत्री नाम में त्री आता है या पंच आता है? तो मूल रूप में तीन मुखों वाली है या पांच मुखों वाली है? तीन मुखों वाली है। और मुख्य देवियां भी कितनी है? तीन ही देवियां हैं। तीनों ही देवियां जब स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती हैं तो गायत्री के रूप में पूजी जाती है। जिनका तीन देवियों के रूप में गायन होता है तो गायन और त्री ये दो शब्दों से मिलकर के गायत्री देवी बनती है।
बाबा ये जो संगठन होता है ना,
हाँ जी,
जो युगल के यहाँ होना चाहिए
है?
बाबा के डायरेक्टल के यहाँ
गीता पाठशालाओं में जो संगठन क्लासेस होते हैं वो संगठन क्लासेस ऐसे परिवारों में हो जो परिवार अपोजिशन करने वाले न हो अंदर से। कोई परिवार में दो सपोजिशन करने वाले हैं और दो भांति ऐसे हैं जो विरोध करने वाले हैं और कोई बात में उनको गुस्सा आ गया, संगठन चल रहा है और क्रोध भड़क गया तो सर्विस होगी या डिसर्विस होगी? डिसर्विस हो जाएगी।
बाबा ये बात समझते नहीं है, समझते ये है
हाँ।
जैसे हम कुमार हैं
हाँ।
कुमार जो है हम लोग मतलब लगभग 30 साल हो गए
हाँ?
सर्विस करते हो
हाँ?
हमारे यहाँ नहीं हो सकता क्या?
कुमारों के घर में अगर संगठन होगा तो कुमारियां भी वहां पहुंचेंगी, कम उम्र की माताएं भी पहुंचेंगी और संगठन में कभी आगे भी हो जाते हैं कभी पीछे भी हो जाते हैं। और वो कुमारियां और कम उम्र की माताएं अगर कोई नीचे ऊपर बात होती है तो कुमार जिम्मेवार बनेंगे? हैं? अगर युगल होंगे तो फिर भी जिम्मेवारी रहती है कि जो फीमेल होगी युगल वो अपने पति को ऊपर नीचे काम नहीं करने देगी, और पति होगा तो पत्नी को ऊपर नीचे काम नहीं करने देगी। इसलिए गीता पाठशालाओं को निमित्त बनाया गया है संगठन के लिए। संगठन माने क्लास, क्लास माने क्या होता है, क्लास का अर्थ, क्लास अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी शब्द क्या है, संगठन। इसलिए चाहे रोज का क्लास हो और चाहे साप्ताहिक संगठन हो या मासिक संगठन हो, त्रैमासिक हो, लेकिन कुमारों को अपने घर में स्थान में संगठन रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है अपने घर गृहस्थ को, तो जो युगल है उनको ही निमित्त बनाया जाता है। कुमारों को निमित्त बनाने की प्रक्रिया या अधर कुमारों को निमित्त बनाने की प्रक्रिया वो सन्यासियों में चलती है, बीके में, एडवांस में नहीं चलती। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? और
बाबा बच्चों के लिए तो बोला जाता है नष्ट मोहा बनने के लिए, तो बाप नष्ट मोहा बनते हैं
क्या?
बाप नष्ट मोहा बनते हैं क्या?
बाप नष्ट मोहा बनते हैं क्या? माने बाप ऐसा नजर आ रहा है जो नष्ट मोहा नहीं है उसको सबसे ज्यादा मोह है, इसलिए ये प्रश्न पैदा हो रहा है। ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? पैदा होने का कारण कोई होगा या नहीं होगा? इसका कारण है कि बाप जो है वो सबसे ज्यादा मोही नजर आ रहा है या नहीं? नीची नजर गोवाली है,
बाप अपने बच्चों के लिए ही तो है बाबा।
हाँ, लेकिन आप बाप किसको कहते हैं? जब आप बाप कहते हैं तो कौन सी आत्मा आपकी नजर में आती है?
शिव बाप।
शिव बाप, तो उसके लिए प्रश्न पैदा हो सकता है?
नहीं।
शिव बाप के लिए ये प्रश्न पैदा हो सकता है नष्ट मोहा का? वो कभी मोही भी बनता है? कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी शिव बाप बनता है क्या? तो प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? इसका मतलब देखने वाली आंख शिव को देख रही है या सब को देख रही है? सब को अगर देखा तो सारा ज्ञान उल्टा हो जाएगा। इसको देखना है, शिव को देखना है।
बाबा जैसे भाई शरीर छोड़ दिए और माता है तो क्लास चला सकती है कि नहीं?
माता कम उम्र की है तो क्लास नहीं चला सकती। माता मैच्योर्ड है, बाल पक गए हैं और बुद्धि में थोड़ी तीखी है, अच्छे बुरे को पहचान सकती है तो क्लास चला सकती है। क्योंकि अगर युगल ने शरीर छोड़ दिया खुदा न खास्ता तो वो अपना युगल किसको मानती है? शिव बाबा को युगल मानती है। तो गृहस्थी है या अकेली है? गृहस्थी है, अनुभवी भी है। और
बाबा 1947 से पहले 1947 से पहले शिव बाप का किसने पाठ किया?
1947 से पहले मुरली किसके तन से चलाई जाती थी? क्योंकि प्रश्न पैदा किया गया है, पता कैसे चलता है कि इनमें शिव बाप आते हैं? क्या जवाब दिया मुरली में? जब ज्ञान देते हैं तब पता चलता है कि ऐसी ज्ञान की बातें तो आज तक दुनिया में कोई ने नहीं सुनाई। तो आत्मा एहसास करती है, रियलाइज करती है कि भगवान की आत्मा बोल रही है, माने शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश कर चुके हैं। जब प्रवेश करते हैं तो वाणी चलाते हैं। तो सन 47 में मुरली ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों के सामने आई। उससे पहले मुरली नहीं चलाई जाती थी ब्रह्मा के मुख से। 8-10 पेज लिखते थे ब्रह्मा बाबा, बाप लिखाते थे कोई माताओं के तन में प्रवेश होकर। इसे क्लियर हो जाता है कि जब से मुरली निकलती चली आई है तब से ब्रह्मा में शिव बाप ने प्रवेश किया, और वो प्रवेश 60 साल की उम्र में हो सकता है या पहले भी हो सकता है, है? 60 साल की उम्र में होते हैं। तो सन 47 में ब्रह्मा बाबा की आयु 60 साल हुई, वानप्रस्थ अवस्था में शिव ने उनमें प्रवेश किया। उससे पहले क्यू में प्रवेश करते थे, अथवा तो कोई माताएं निमित्त थी जिनमें प्रवेश करने का प्रूफ मुरली में आया है। जैसे बोला है 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, क्या दो हो गए, 10 वर्ष से ब्रह्मा बाबा के साथ रहने वाला ध्यान में जाती थी, ड्रिल कराते थे, बाप समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माने कोई एक माता थी और कोई एक भाई भी था, उनमें बाबा प्रवेश करते थे, आज वो भी नहीं। क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा से पहले, दादा लेखराज से पहले कोई और आत्माओं में प्रवेश होकर के वाणी चलाई जाती। ओके।